आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
नमस्कार, 17 दिसंबर है आज, दिन है गुरुवार और आज तक रेडियो पर मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं शाम का खबरनामा दिन भर। किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ किसानों की महापंचायत चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार अपने नेताओं के साथ बैठक में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई, इसमें क्या बातें हुई जानेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बंगाल की सियासत में आए भूचाल की। यहाँ शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद इस्तीफों की लाइन लग गई है, तो अब कौन कौन से नए चेहरे, कौन कौन से नए नेता आए हैं कतार में और आगे की क्या राह होगी तृणमूल कांग्रेस के लिए। इसके बाद बात करेंगे कि क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे चली गई भारत की रैंकिंग, जबकि यूएनडीपी के प्रेसिडेंट खुद मानते हैं कि भारत ने प्रदर्शन अच्छा किया है। फिर बताएंगे कैसे खर्च होगा भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी से मिलने वाला कर्ज, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज से कैसे अलग है और कब तक चुकाएगी इसे भारत सरकार। फिलहाल हेडलाइन सुनिए खुशबू कुमार से।
भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअली तरीके से आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना शामिल हुए। दोनों देशों ने कई एमओयू साइन करने के साथ चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल मार्च में ढाका का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई टल गई है। अदालत ने आज की सुनवाई के दौरान कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी है कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड पर रखने का विचार करे। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया है। अमृतसर के अटारी सरहद के नज़दीक बीती रात कोहरे की आड़ में दो घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी BSF ने चेतावनी दी। चेतावनी के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें मौके पर दोनों मारे गए। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24,010 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 355 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इस तरह देश में कोरोना मामलों की कुल संख्या 99 लाख को पार कर गई है, जबकि महामारी से मरने वालों की संख्या अब 1,44,000 को पार कर गई है। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों को निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है, वे सभी इसके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में आतंकवादियों के साथ हुए संघर्ष में कम से कम 13 सुरक्षा बलों की मौत हो गई है। बगलान प्रांत के प्रवक्ता ने इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि आतंकवादी संगठन तालिबान ने इस हमले को लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत को कोरोना वैक्सीनेशन के पहले फेज के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये से 13,000 करोड़ रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये खर्च भारत को कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम के तहत मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद से अलग होगी।
आज तक रेडियो पर आप शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिनभर सुनना शुरू कर चुके हैं। मेरा नाम अमन गुप्ता है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है और कानून वापस होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। सरकार ने किसानों को समझाने के लिए अलग मोर्चा खोल रखा है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में किसानों को संबोधित करेंगे। उधर आंदोलन की ताकत बढ़ती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की 18 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इन लोगों की यूपी गेट पर आज महापंचायत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के तमाम नेता, जिनमें महासचिव भी शामिल हैं, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं। सरकार और किसान आंदोलन के बीच बातचीत का लंबा दौर चला, लेकिन सब बेनतीजा रहा। दिलचस्प ये है कि इस रस्साकशी में अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है। कल किसानों को हटाने के लिए डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक समिति बनाने की बात कही गई। सरकार को नोटिस भेजा गया और इस मामले में 8 किसान संगठनों को पार्टी बनाया गया, उन्हें भी नोटिस भेजा गया। हालांकि इन किसान संगठनों में शामिल भारतीय किसान यूनियन दोआबा के नेता MS राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें नोटिस नहीं मिला है। जब मिलेगा तब सभी किसान संगठन चर्चा करके आगे का फैसला लेंगे।
अभी तक हमको कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस नहीं है। जितना समय हमको रिटर्न में कोई नोटिस आता नहीं, हम उसके बारे में उतना समय कुछ बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक डिसिप्लिन है कि जब कोई हमको लेटर आती है सरकार की तरफ से, जहां कोई हमको नोटिस आता है, तो हम 30-30 बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो चर्चा करने के बाद फिर उसका हम जाकर जवाब देते हैं उनको। तो कहने का भाव यह है कि अभी तक हमको कोई रिटर्न में नोटिस आया नहीं, तो इसलिए जब वो आएगा तो उस पर पहले चर्चा करेंगे सभी साथी बैठकर, तो चर्चा करने के बाद फिर उसका जवाब देंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर आज भी सुनवाई हुई, हालांकि अब सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन आज की कार्यवाही में किन बातों का प्रमुखता से जिक्र किया गया, यही जाना मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो की रिपोर्टर अनीशा माथुर से।
देखिए, चीफ जस्टिस की बेंच का सीधा सीधा रुख यही था कि आपका प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है इसका कुछ लक्ष्य होता है, इसका कुछ गोल होता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूसली बस प्रोटेस्ट ही करते रह जाएं और सड़कें रोक के रखें। डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ कुछ नहीं होनी चाहिए, वायलेंस कुछ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने पुलिस को भी हिदायत यही दी कि आप भी कुछ ऐसा ना करें जिससे कुछ वायलेंस हो, और किसानों से भी कहा है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी बात जो कोर्ट ने सबसे इम्पोर्टेंट ये कही कि हम चाहते हैं कि बातचीत से इसका कुछ हल निकले, क्योंकि सबका राइट है, अगर आपको लगता है कि कोई कानून जो है वो गलत है, जो आपको पसंद नहीं है, उसको अगेंस्ट आवाज उठाने का आपको पूरा हक है। तो हम चाहते हैं कि कुछ कृषि विशेषज्ञों की एक कमेटी बिठाई जाए जो बात करे, फैसिलिटेट करे दोनों तरफ सरकार और किसानों के बीच की बातचीत। एक कोर्ट ने सजेशन ये भी दिया सरकार को कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि कृषि कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन जो है, कृषि कानून का अमल में लाना जो है, उसको थोड़े दिन के लिए रोक दें, अभी इम्प्लीमेंट ना करें जब तक आप बातचीत नहीं करते। उससे किसानों को भी थोड़ी रिएश्योरेंस मिलेगी कि हमारी बात सुनी जा रही है, सरकार जबरदस्ती इस कानून हम पर नहीं थोप रही। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने साफ साफ कह दिया है कि इस तरह से रोकना कानून की इम्प्लीमेंटेशन को शायद पॉसिबल ना हो। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि शायद उल्टी पड़ जाए बात, कि किसान फिर टेबल पर आकर बात करने से ही मुकर जाए। तो कोर्ट ने अभी फिलहाल अटॉर्नी जनरल को कहा है कि आप सरकार से बात करके बताइए कि आगे क्या किया जा सकता है। नोटिस गया है दोबारा से सारे कृषि संगठनों को, सारे किसान यूनियन को, जिनको कल नोटिस गया था। अब की बारी सोलिसिटर जनरल से कहा गया है, पिटिशनर से कहा गया कि आप कंफर्म कीजिए कि सबको नोटिस और पिटिशन की कॉपी मिले, ताकि जो सुनवाई है उसमें सब लोग आ सके।
ये थी सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही आज तक रेडियो रिपोर्टर अनीशा माथुर।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, JioSaavn जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बंगाल में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के जाने माने नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक रहे शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी से किनारा कर लिया। पहले उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री का पद छोड़ा और आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। TMC नेता स्वागत रॉय ने बताया कि शुभेंदु की महत्वाकांक्षाएं ऐसी थीं जिन्हें पार्टी पूरा नहीं कर सकती थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
वो चाहते थे कि 5-6 जिला में उसको नियंत्रण रहे, वही सब ठीक करेगा। तो पार्टी मानने वाला नहीं था, पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन उसको मन में जरूर था कि वो डिप्टी CM या CM बनने चाहते हैं। उनका उच्चाशा बहुत ज्यादा है, हम तो वो पूरा नहीं कर पाए।
तो शुभेंदु तो गए ही, लेकिन इसके बाद TMC में इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। मालदा से भी 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये कौन से चेहरे हैं और इनकी पार्टी से नाराजगी की वजह मैंने जानी पश्चिम बंगाल में आज तक रेडियो की रिपोर्टर मनोज लोहिवाल से।
पहली बात तो ये कि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन चुप्पी साधे हुए थे सारे वो नेता तृणमूल कांग्रेस के, खास तौर से जो ये मान रहे थे कि समय आने पर बोलेंगे, और अब वो समय आ गया है जिसके कारणवश एक के बाद एक इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी है। ये मान लीजिए कि झड़ी लग गई है इस समय, जहां एक शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद जितेंद्र तिवारी ने, जो आसनसोल में बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं, वहीं साथ ही साथ कई और छोटे पद के नेता यानी जिला स्तर के नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया तो पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि हमने इस बात की अभी हमें पता नहीं है कि इन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, जब पता लगेगा तो इसका जवाब भी देंगे। अब आप ये सोचिए कि एक पार्टी, एक ऐसा दल जिसे ये नहीं पता है कि किसने इस्तीफा दे दिया है और किसने नहीं दिया है, और इस तरह के सवालों से बचने के लिए बार बार बात को घुमाना, ये अपने आप में बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को ये अंदेशा हो गया है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कम से कम पार्टी में।
तो मनोज्ञा, ये पांच नेता टीएमसी के लिए कितने जरूरी थे और अब आगे की राह टीएमसी के लिए क्या हो सकती है?
तृणमूल कांग्रेस की चुनौतियां बहुत होंगी। पहला ये कि शुभेंदु अधिकारी संगठन के आदमी माने जाते रहे हैं, इसलिए उन्हें ये बखूबी पता है कि जितना संगठन का काम जमीनी स्तर पर होता है या लोगों से जुड़ाव, लोगों को सिर्फ वोटरों तक पहुंचना नहीं लेकिन वोटरों के वोट को अपनी पार्टी के वोट में तब्दील करना, ये बड़ी चुनौती होता है। जमीनी स्तर पर शुभेंदु अधिकारी का काफी कनेक्ट रहा है, खासतौर से पूर्व मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर में, जो उनके खुद के निजी जिले भी हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के लिए काम किया है सांगठनिक स्तर पर, उसमें काफी सफलता भी कई बार हासिल की है, 2016 में भी और उसके बाद भी। जब बातें बिगड़ी दोनों पार्टी उनके बीच और शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, उसके बाद पहले मंत्री पद से इस्तीफा और उसके बाद अब पार्टी से भी इस्तीफा लगातार, ये सिर्फ नाराजगी नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये एक बड़े बर्फीली चोटी के पहाड़ की शुरुआत है जिसने अब गलना शुरू कर दिया है और इस पूरे पहाड़ ने ये मान लीजिए हिलना शुरू कर दिया है, जो बता रहा है कि ये आने वाले भूकंप का अंदेशा भी हो सकता है।
अच्छा मनोज्ञा, ममता के अपने लोगों में इस नाराजगी का कारण उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लाना बताया जा रहा है। अगर इसमें सच्चाई है तो उनके गढ़ में पांव पसारती बीजेपी के बीच वे अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हैं, क्यों अपने नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही?
देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी इमोशनल स्तर पर थी, आंतरिक स्तर पर, जो ये जानते थे कि वो दीदी से कनेक्टेड हैं और दीदी से उनकी लगातार सीधा संबंध या सीधी बातचीत होती थी। समस्या तब होनी शुरू हुई जब दीदी तक पहुंचने के रास्ते डाइवर्जन की तरफ से जाने लग गए और इसकी वजह से जब वो कनेक्ट टूटा तो साथ भी छूटना शुरू हुआ। ये नाराजगी तब से शुरू हुई, खास तौर से विजिबली 2019 की हार के बाद से, जब प्रशांत किशोर को लाया गया और उनके साथ साथ पार्टी के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं, उनके लोग जो हैं उन्हें भी लाया गया। करीब 3000 लोगों की टीम प्रशांत किशोर के साथ काम कर रही है, जो जमीनी स्तर पर जिला में जाकर सर्वे करके फीडबैक रिपोर्ट देती है या फिर डिजिटल सर्वे करती है या टेली कम्युनिकेशन के जरिए भी जानकारी लेने का प्रयास करती है कि कौन कहाँ तृणमूल का नेता क्या काम कर रहा है या फिर 2019 के बाद सुधार करने के लिए पार्टी में उन्हें लाया गया था। जो नेता 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस से और सीधा दीदी से उनका संपर्क रहा है, उन्हें ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई नया व्यक्ति आकर ये उन्हें बताए या फिर उनकी जो टीम के लड़के या लड़कियां जो कम उम्र के हैं वो ये बताएं कि तृणमूल के आला नेता कार्यकर्ता राजनीति में क्या कदम उठाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा भतीजा का के प्रति भी नाराजगी रही है, उसने कई तरह से तूल पकड़ लिया और अंजाम सभी देख रहे हैं।
ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल।
हेलो डॉक्टर।
हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।
यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र कह लीजिए, उसकी एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। वो हर साल मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट जारी करती है। इस साल भी वो रिपोर्ट आई है। 188 देशों के लिए जारी ये रिपोर्ट मुख्य रूप से लोगों के जीवन स्तर को दर्शाती है। इसके इंडेक्स से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पर तय होता है और भारत की इस लिस्ट में मौजूदा स्थिति क्या है, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से।
जी, ये संयुक्त राष्ट्र का हर साल एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो निकाला जाता है, जिस पर हर देश को लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि कितनी उम्र तक यहाँ पे भारत में जी पाते हैं, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, इनके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मापा जाता है। और उसमें अगर हम देखें, भारत इस सारी दो कदम नीचे गिर चुका है, 131 रैंकिंग आया है भारत का पिछले बार से, दो कदम नीचे। पिछले साल अगर आप देखें तो वो एक कदम ऊपर हुआ था, अब दो रैंक नीचे हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं शायद उसमें, और जो एजुकेशन है और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम भारत को उसी लेवल पे रहने का, उस लेवल पे नहीं रह पाया। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ये इंडेक्स है, इसमें इस साल भारत दो रैंक नीचे गिर चुका है।
अच्छा गीता, इस लिस्ट में कौन सबसे ऊपर रहा और भारत की अपने पड़ोसी मुल्कों के सापेक्ष जो इंडेक्स की स्थिति है वो क्या है?
अगर आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्कों में दो देश ऐसे हैं जो भारत से कई ज्यादा रैंक्स आगे हैं, वो है श्रीलंका और चीन। चीन इसलिए क्योंकि चीन का जो पर कैपिटा इनकम है वो पर कैपिटा इनकम ही भारत से ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अगर आप देखें तो भारत से ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो उससे भी बेहतर अगर रैंकिंग देखा जाए तो श्रीलंका का है, श्रीलंका 72 पर है और चीन है 85 पर। नॉर्वे सबसे टॉप पे है, क्योंकि नॉर्वे का अगर आप देखें कोई भी इंडेक्स देखें, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, नॉर्वे हमेशा से आगे रहा है इन मामलों पर, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन अगर आप उन देशों में कंपेयर करें जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो चीन और भारत को अगर देखें तो चीन काफी आगे है। बाकी जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसे पीछे हैं, जहां पर बांग्लादेश बिल्कुल ही हमसे सबकर है, लेकिन अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो काफी नीचे है। तो नेपाल की भी अगर रैंकिंग देखें तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, पाकिस्तान भी काफी नीचे है। तो ज्यादातर अगर आप पड़ोसी मुल्कों में देखें तो भारत, श्रीलंका और चीन से नीचे है, लेकिन बाकी सब में आगे।
अच्छा गीता, एक और बात, यूएनडीपी के जो रेजिडेंट प्रतिनिधि हैं शोको नोडा, उन्होंने कहा है कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का ये मतलब नहीं है कि भारत ने अच्छा नहीं किया, बल्कि इसका मतलब ये है कि दूसरे देशों ने बेहतर किया। तो ऐसा कहने का उनका क्या अर्थ है?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब यूएनडीपी अपने पैरामीटर्स देखता है, उन पैरामीटर्स में वो बस ये जो पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कैसे एजुकेशन मिला है, कैसे जॉब मिले हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए या नहीं, इन पैरामीटर्स को देखता है। तो उनके बड़े स्टेप स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भारत ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया इसलिए गिर गया है उसका रैंकिंग। ये भी हो सकता है कि भारत ने शायद अच्छा किया हो, लेकिन कुछ एकाध ऐसे देश होंगे जिन्होंने भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया, इसलिए आगे बढ़ गए और भारत पीछे रह गया, रैंकिंग में गिरा है। लेकिन अभी हमें डिटेल देखना होगा कि किन किन स्तरों पे क्या भारत नीचे गिरा है या आगे बढ़ा है। अगर आप उन स्तरों को देखें और उन पैरामीटर्स को देखें तो उन पैरामीटर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है कि कुछ देशों ने शायद भारत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है।
ये थी इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। और एनआरसी का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है। क्या वजह है एनआरसी के मुद्दे के जोर पकड़ने की? जो 19 लाख लोग बाहर हुए थे वो ट्रिब्यूनल में अब तक शिकायत क्यों नहीं कर सके? क्या पहले जो एनआरसी लागू की गई थी उसमें किसी तरह की कोई खामियां थी? और आगे क्या कोई दुरुस्त एनआरसी आने की संभावना है? इन सब मसलों पर मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर कौशिक डेका से बातचीत की है। ये पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज पर मिल जाएगा। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। अच्छा, जैसे हम लोगों को कोई कर्ज लेना होता है तो हम अपने आसपास के सरकारी या निजी बैंकों का रुख करते हैं, ठीक वैसे ही भारत सरकार को यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल यानी वित्तीय संस्थाओं के पास जाती है। ऐसी ही एक संस्था है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय डेवलपमेंट बैंक है। इसकी शुरुआत ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साझा प्रयास के तहत 2015 में की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। इसी बैंक और भारत सरकार के बीच करीब $1 अरब के लोन के लिए करार हुआ है। COVID-19 के बाद की परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है उससे निकालने के लिए इस कर्ज की रकम का इस्तेमाल होगा। खासतौर पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसे खर्च किया जाएगा। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के किन स्वरूपों पर यह खर्च होगा और इससे कितनी इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद है, यही जाना मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से।
जो सरकार ने बयान जारी किया है उस हिसाब से जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसे $1 बिलियन का लोन दे रही है सरकार और इसको मनरेगा के माध्यम से खर्च किया जाएगा। मतलब ये कि रोजगार बढ़ाने की जो ग्रामीण रोजगार की योजनाएं हैं उनमें शायद इसका खर्च होगा और सरकार के पास संसाधनों की दिक्कत भी लग रही है इस लोन से ऐसा महसूस हो रहा है। इसे इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद तो ज्यादा नहीं क्योंकि लोन का साइज बहुत बड़ा नहीं है, $1 बिलियन है और इसे सारे राज्यों के बीच में बांटा जाएगा अलग अलग राज्यों में। लेकिन हाँ यह है कि क्योंकि मंदी अगर लंबी खिंचती है जिसकी संभावना दिखाई दे रही है कि पूरा साल निगेटिव ग्रोथ के साथ जाएगा, अगले साल भी रिकवरी तेज उम्मीद नहीं है, इसलिए सरकार को फंड चाहिए ताकि वो ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रमों को संचालित कर सके और जो लोग पिरामिड में सबसे नीचे हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं उनको कम से कम मदद मिलती रह सके।
अच्छा अंशुमान जी, एक चीज और समझना चाहूंगा कि IMF या वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है भारत को, तो ये NDB से जो मिला लोन है वो किस तरह से अलग है? और हाँ ये भी समझना चाहूंगा कि भारत इसे चुकाएगा कैसे?
देखिए अलग अलग शर्तें होती हैं। IMF के लोन आमतौर पर इस तरह के नहीं होते। IMF के लोन हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस में आते हैं। जब कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में होता है तो उसे उस क्राइसिस से बचने के लिए IMF की मदद मिलती है। जैसे सबसे ताजा उदाहरण पाकिस्तान है, उससे पहले ग्रीस था, इंडिया को 1991 में लोन मिला था लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस में था। तो IMF के लोन तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए और क्राइसिस के लिए आते हैं। वर्ल्ड बैंक के लोन के दो हिस्से होते हैं। एक लोन वो होता है जो IDA के तहत आता है जो बहुत कम ब्याज पे होता है और आमतौर पर गरीबी दूर करने के या बुनियादी सुविधाएं देने की योजना से संबंधित होते हैं। और दूसरा लोन जो होता है वो थोड़ा महंगे ब्याज दर पर होता है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए आता है। इस बैंक से मिलने वाला लोन जो है वो हमें लगता है कि IDA और IBRD के बीच में कहीं होगा। सरकार ने बयान में ये नहीं बताया है कि इसमें ब्याज दर कितनी होगी, पर इतना जरूर पता चला है कि इसमें 30 साल का समय है। 30 साल में भारत को ये कर चुकाना होगा। इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड और मिल सकता है, यानी कुल 35 साल तक का समय ले सकती है सरकार, भारत सरकार इस कर्ज को वापस चुकाने के लिए।
ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एडिटर अंशुमान तिवारी। तो आज दिन भर में बस इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साउंड के साथ ही कपिल देव सिंह इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाजत चाहूंगा, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।